हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कामायनी, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट कबीर।
जी हां, और स्वागत है आपका फिर से हमारे खास कार्यक्रम हमसे है देश की इस नई कड़ी में, जहां हम हमेशा की तरह बात करेंगे लोकतंत्र से जुड़े ढेरों मुद्दों की, आपके हक, आपके अधिकारों की। और आज की इस कड़ी में हमारा मुद्दा है शिक्षा और संस्कृति का हक।
तुम्हें मालूम है कबीर कि भारतीय संविधान हर नागरिक को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 29 में लिखा है कि भारत का कोई भी समुदाय जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, जिसमें खान पान, रहन सहन, तौर तरीके भी शामिल हैं, उन्हें इन सब को सुरक्षित रखने का हक है। और यही नहीं, किसी को भी भाषा, जाति या धर्म के आधार पर किसी भी सरकारी स्कूल या ऐसे विद्यालय जिसे सरकारी फंड मुहैया कराया जाता है, उसमें दाखिले से वंचित नहीं रखा जा सकता।
हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का भी हक है। हमारा संविधान ये कहता है कि सरकार ऐसे संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराने में कोई भेदभाव नहीं बरतेगी।
तो चलो अपने अगले सेगमेंट बेताल 26 में सुनते हैं बुलबुल बाग की एक नई कहानी।
बेताल 26, बेताल 26, बेताल 26 रे।
बेताल, बेताल, बेताल।
है? क्या बात है विक्रम जूनियर, आओ तुम्हें बुलबुल बाग ले चलूं। बुलबुल बाग की एक खूबसूरत सुबह हुई और पौ फटते ही सभी पक्षी दाना चुगने निकल गए। पर तभी चुलबुली चिड़ैया एक ऊंचे पेड़ से गिर गई।
अरे चुलबुली, तुम्हारे तो पंख अभी ढंग से आए भी नहीं और तुम लगी उड़ने। हैं? तुम्हारी माँ भी कमाल है, ऐसे कैसे उड़ने दे रही है भला?
माँ नहीं है।
नहीं है मतलब?
वो 3 दिन से नहीं आई, बहुत भूख लगी थी, कुछ खाना ढूंढने निकली थी। जाने से पहले माँ बोल गई थी जब वो वापस आएगी वो मुझे उड़ना सिखाएगी, और फिर मैं अपना खाना अपने आप ढूंढ सकूंगी।
लगता है कोई शिकारी तुम्हारी माँ। नहीं नहीं नहीं, खैर पर तुम ऐसे कैसे उड़ सकती हो भला? चलो चुलबुली, पहले तुम्हें कुछ खिलाते हैं। हाँ, मछली खाओगी?
मछली कैसे खाऊंगी मैं शेखचंद चाचा?
हाँ?
आप जितना बड़ा मुंह नहीं है मेरा।
अच्छा, मेरा मतलब है, देखो चलो घुमक्कड़ घिरनी के पास चलते हैं।
घुमक्कड़ घिरनी का मन नन्ही सी चुलबुली को देखकर पसीज गया। शेखचंद सारस ने जरा झेपते हुए कहा,
अब ऐसे नन्हे मुन्हे बच्चे को उड़ना कौन सिखाएगा घिरनी? चिड़िया तो वैसे भी कम दिखती है आजकल, इसे अगर खाना लाकर दे दिया जाए तो कैसा रहेगा घिरनी?
एक बार खाना लाकर देंगे, दो बार देंगे, पर उड़ना तो सीखना ही पड़ेगा इसे, जैसे हर चिड़िया सीखती है। और उड़ना सीखना तो इसका हक है शेखचंद।
हम कैसे सिखा सकते हैं घिरनी, ये तो चिड़िया है, हम सारस, हमें इनके जैसा उड़ना थोड़ी ही आता है।
चपल चींटी, नेक नेवला, हुकुम चंद हंस और बाकी सभी ने इस मुद्दे पर खूब विचार विमर्श किया। बहुत वाद विवाद के बाद सभी का एक ही मत था कि चुलबुली चिड़ैया को उड़ना सिखाने की जिम्मेदारी बुलबुल बाग के लोकतंत्र की ही थी।
बल्कि पक्षी ही क्यों, कई नन्हे मुन्ने जानवर भी तो होंगे जिनको उनके माता पिता खाना ढूंढना और जंगल में रहने के बाकी गुर नहीं सिखा पा रहे होंगे, खासकर वो जानवर जो बुलबुल बाग के प्रशासनिक कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो इस लिहाज से भी उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी बुलबुल बाग की ही है। तो चुलबुली चिड़ैया, आप तैयार रहना उड़ना सीखने के लिए, कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू।
अरे वाह, शुक्रिया चीटी चाची, नेक नेवले दादा, शेखचंद चाचा, मुझे अब मछलियाँ नहीं खानी पड़ेंगी।
तो क्या समझे विक्रम जूनियर?
कि हर किसी का हक है कि वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पढ़े लिखे और आगे बढ़े, और जो किसी कारण ये नहीं कर पाते तो ये जिम्मेदारी लोकतंत्र की है कि उन्हें भी ये एक समान मौका दिया जाए।
सही जवाब, और अब मैं उड़ा।
अरे अरे बेताल, अरे सुनो बेताल, अरे बेताल सुनो तो।
जी हाँ, तो ये थी कहानी बुलबुल बाग की। और चलिए अब बुलबुल बाग से वापस चलते हैं अपने देश,
अपने अगले सेगमेंट देश विदेश में बात करते हैं अपने देश की संस्कृति की।
देश विदेश से, देश विदेश से।
भारत की संस्कृति 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। इस लिहाज से ये संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की संस्कृति और पारंपरिक विविधता विश्व में एक अनूठा उदाहरण रही है। संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है कला, और भारत की संस्कृति में भी हमेशा संगीत और नृत्य कलाओं का एक अहम स्थान रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा हिंदू ग्रंथों से काफी प्रभावित है। इसमें कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत और कई राग शामिल हैं। भारतीय नृत्य के लोक और शास्त्रीय रूपों में कई विविधताएं हैं। जाने माने लोक नृत्यों में शामिल हैं पंजाब का भांगड़ा, असम का बिहू, झारखंड और उड़ीसा का छाऊ, राजस्थान का घूमर, गुजरात का डांडिया और गरबा, कर्नाटक का यक्षगान, महाराष्ट्र का लावणी और गोवा का देखनी। संस्कृति का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है भाषा। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या ने यहाँ की संस्कृति और पारंपरिक विविधता को बढ़ाया है। 2001 के सेंसस के अनुसार 10 लाख से भी ज्यादा लोग 30 भाषाएं बोलते हैं, और 122 अलग अलग भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें करीब 10,000 लोग ही बोलते हैं। उत्तरी, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में फैली आर्य भाषाओं के अलावा एस्ट्रो एशियाई भाषाएं, जिसमें शामिल हैं भारत के मध्य और पूर्व में बोली जाने वाली मुंडा भाषाएं, उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली खासी भाषाएं और निकोबार द्वीप में बोली जाने वाली निकोबारी भाषाएं। इसके अलावा भारतीय भोजन में भी विविधता है। पंजाब के छोले भटूरे, मकई की रोटी और सरसों का साग, मारवाड़ के गट्टे की सब्जी, दक्षिण भारत का इडली डोसा और नारियल में बने पकवान, कहीं शाकाहारी तो कहीं मांसाहारी। कला, संस्कृति और भाषाओं के समागम से भारत की विविधता इसी तरह पूरी दुनिया को अचंभित करती रही है। दुनिया के लिए भारत एक देश के रूप में एक संग्रहालय है।
कबीर, मुझे अपना स्कूल याद आ गया।
स्कूल याद आ गया, वो कैसे?
स्कूल में भी तो पढ़ाने के माध्यम होते थे ना। मैं जब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्कूल गई तब मुझे बड़ी दिक्कतें आई, सब कुछ अंग्रेजी में जो पढ़ाया जाता था।
चलो क्यों ना हम अपने श्रोताओं से पूछें और जाने कि भाषा के साथ उनके अनुभव कैसे रहे।
तो चलो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट एक था नागरिक में।
नागरिक।
तो हमने आपसे पूछा कि आपके अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं, और क्यों?
देखिए, मेरा अपना मानना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक बार कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, यानी अगर अपनी भाषा में हम उन्नति करेंगे तो सारी भाषाएं जो हैं वो अपने आप उन्नत हो जाएंगी और हमारा देश भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा।
देखिए, मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है वो तीनों लैंग्वेज में होना चाहिए। सबसे पहली आपकी रीजनल लैंग्वेज। किसी ने कहा है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए तीन लैंग्वेज आनी तो ज़रूरी है। एक जो आपकी मदर टंग है, जो लोकल भाषा है आपकी, दूसरी जो आपकी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, और तीसरी अंग्रेज़ी भी, इसलिए क्योंकि वो अब एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है।
देखिए, हमारी जो भी भाषा होगी वो भाषा होनी चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हों। ये नहीं कि हम सिर्फ दूसरों की देखा देखी कोई भी भाषा सीखने के लिए आतुर हो जाएं, लेकिन हाँ, हमारी भाषा ऐसी हो जो हमारे काम भी आए, लेकिन हम अपनी मदर टंग को भी भूल ना जाएं उसके चक्कर में।
फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो स्कूल में शुरू होता है वो रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद ऑफकोर्स दो और लैंग्वेजेस आई थिंक इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। फर्स्ट इंग्लिश ऑफकोर्स, बिकॉज इट हैज़ कम आउट टू बी बींग एन अ ग्लोबल लैंग्वेज। जॉब्स के परस्पेक्टिव और इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए येस ऑफकोर्स इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अदरवाइज आई थिंक नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया में हिंदी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, तो वो रहना चाहिए इन साधन में जो भी उनका प्रेफरेबल लैंग्वेज है। जैसे कोठारी कमीशन ऑफकोर्स 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो आई थिंक उसके नॉर्म्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट कहीं ना कहीं लैंग्वेज इशू को डील करते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंड. ऑफकोर्स उसमें भी कुछ गैप्स हैं बट या.
तुम्हें पता है कबीर, लिंग और जाति के नाम पर भी शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव होता रहा है
और खासकर लड़कियों महिलाओं को.
इसी संघर्ष के दर्द पर जानी मानी महिलावादी एक्टिविस्ट कमला भसीन ने हमें सुनाई ये कविता.
दिल 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 से, दिल से, दिल 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 से, दिल से.
एक बेटी जो पढ़ना चाहती है, पिता उसको कहते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है, पढ़ने को बेटे काफ़ी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है. तो बेटी को थोड़ा ताव आ गया और उसने कहा कि जब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है. यानी वो कह रही है कि अगर लड़का होती तो शायद न पढ़ती, शायद ज़रूरत न होती, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है. पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है, मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है, सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है, कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है. मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है, मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही घड़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है. कई जोर जुल्म से बचना है सो पढ़ना है, कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है, मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है, मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है. हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, मीरा का गाना गाना है सो पढ़ना है, मुझे अपना राग बनाना है सो पढ़ना है, और अनपढ़ का नहीं जमाना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है.
तो इसी के साथ अब वक्त हुआ है हमारे सवाल का, जिसका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट.
आज का सवाल है, भारत के संविधान में शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार कहाँ सुरक्षित हैं? तो मोबाइल उठाइए और कॉल कीजिए 07966210428 पर. दिए गए ऑप्शंस के लिए बटन दबाइए और पाइए हमारा सरप्राइज गिफ्ट. कॉल निशुल्क है.
और हाँ, हमें आप पत्र, ईमेल और फोन के जरिए जरूर बताइएगा, अपनी कविताएं और गाने जरूर भेजिएगा. एसएमएस और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972. तो अब हम लेंगे आपसे इजाजत. हमसे है देश की अगली कड़ी में लोकतंत्र से जुड़ी ढेर सारी जानकारियों और कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.